આદરણીય રાજયોગિની ઉષા દીદીજી, ઇસ ગાંધીનગર કી ફુલવાડી કે બીચ મંચ પર હમ સભી કે બીચ મેં ઉપસ્થિત હૈ. ઉષા દીદીજી, આપકા ઇસ સભા મેં બહોત બહોત તહે દિલ સે હાર્દિક સ્વાગત હૈ, સ્વાગત હૈ, સ્વાગત હૈ. આજ આપકા વિષય હૈ કર્મયોગ ભાગવત દર્શન. ઇસ વિષય પર પ્રકાશ ડાલેંગી રાજયોગિની આદરણીય ઉષા દીદીજી. ઓમ શાંતિ.
ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા કે આજ તીસરે દિન પર હમ સભીને અબ તક જો બાતે સુની કે કિસ તરહ પ્રથમ દિન અર્જુન કા વિષાદ યોગ થા ઓર મહર્ષિ વેદ વ્યાસજીને બહોત સુંદર વર્તમાન સમય કે મનુષ્ય કી મનોદશા કો અર્જુન કી મનોદશા કે રૂપ મે પ્રગટ કિયા હૈ. और दूसरे अध्याय में जब वो स्वयं को ईश्वर का शिष्य निश्चित कर लेता है तो उसके बाद भगवान उसको बहुत सुंदर आत्मा का ज्ञान देते हैं. और आत्मा का ज्ञान देते हुए उन्हें कई सूक्ष्म बातें समझाते हैं कि आत्मा किस तरह से अपने वस्त्र को बदली करती है और इसलिए अलग अलग अवस्थाओं से गुजरना ये तो स्वाभाविक है. परिवर्तन की प्रक्रिया नित्य चलती है लेकिन उस परिवर्तन की प्रक्रिया में मनुष्य कहीं भी शोक नहीं करता है. इसी तरह शरीर को बदली करना ये भी एक परिवर्तित अवस्था है तो वहां शोक क्यों है. और फिर भगवान ने एक सूक्ष्म ज्ञान की बात उनको समझाई कि मनुष्य अपनी चित्त वृत्ति को जिस सांचे के अंदर डाल देता है वैसे ही जीवन के अंदर फिर अनुभव करता है. अगर उसने नकारात्मक सांचे में अपने आप को डाला तो जीवन और भी संघर्ष वाला बन जाता है. लेकिन जब व्यक्ति अपने आप को सकारात्मक सांचे में डालता है तो उस वक्त धीरे धीरे उसके जीवन का संघर्ष कम होने लगता है, उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है और जीवन के संघर्ष को सहजता से विजय में परिवर्तित कर लेता है. साथ ही साथ बहुत सुंदर बताया भगवान ने कि मनुष्य के चारों ओर एक दिव्य प्रभा मंडल होता है परंतु जब वो अवगुणों के वश हो जाता है तब वो प्रभा मंडल क्षीण हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा उसकी बढ़ने लगती है. वो नकारात्मक ऊर्जा हमेशा अनेक प्रकार की समस्याएं, घटनाएं, नकारात्मक घटनाओं को आकर्षित करती है अपनी ओर और इसीलिए जीवन का संघर्ष बढ़ जाता है. परंतु जितना सद्गुणों के आधार पर व्यक्ति अपना प्रभा मंडल बनाता है उतना जीवन के अंदर खुशियां, उमंग, उत्साह स्वाभाविक अनुभव करता है और जीवन की क्वालिटी में बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है. उसके बाद भगवान ने अर्जुन को स्वधर्म का परिचय कराया कि आत्मा का गुण धर्म क्या है और उस स्वधर्म के आधार पर जीवन का संघर्ष करेगा तो हमेशा विजयी का अनुभव करेगा। परंतु जब पर धर्म के वश वह जीवन का संघर्ष करेगा तो हर संघर्ष में हार की अनुभूति होगी। उसके बाद स्वधर्म के आधार पर कर्म करने का मतलब बताया कि कर्म योगी जीवन किसको कहा जाता है। जब स्वधर्म के आधार पर व्यक्ति अपने कर्मों का आचरण करता है तो वो यथार्थ कर्म योगी बन जाता है। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल परछाई की तरह जुड़ा हुआ है, उसको कोई अलग नहीं कर सकता है। इस जन्म में नहीं तो आगे जन्म में भी उसको भोगना ही पड़ता है। और फिर भगवान ने योग का मतलब बताया कि कर्म में जब बैलेंस आता है, संतुलन आता है, तो वही योग है। और उस योग में कर्म योगी बन करके वो कर्म कर रहा है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या? तो भगवान कहते हैं कुशलता। कर्म कुशलता, व्यावहारिक कुशलता, जीवन के अंदर कौशल का अनुभव करना, ये यथार्थ कर्म योगी की निशानी है कि व्यक्ति बैलेंस में रह करके अपना कर्म का आचरण कर रहा है। इतनी सुंदर बातें हमने सुनी और उसके बाद फिर स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण। आत्मसंतुष्टि सबसे पहला लक्षण, कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को समेट लेता है और जब उसको विस्तार में लाना है तब करता है, यानी कर्मेंद्रिय के ऊपर संपूर्ण अधिकार। और फिर अर्जुन पूछता है कि ये मनुष्य की बुद्धि योग परायण बुद्धि से नष्ट कैसे हो जाती है। तब भगवान ने बहुत सुंदर वो रास्ता बताया कि किस तरह विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष विषयों में आसक्त होता है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध की उत्पत्ति होती है और क्रोध में व्यक्ति अविवेकी बन जाता है और उस अविवेकी होने के कारण उसकी स्मृति शक्ति भ्रमित हो जाती है और जब स्मृति ही भ्रमित हो जाए तो योग परायण बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो योग अर्थात स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान, इट इज अ साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिनिंग। ये बहुत सुंदर दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट किया। आज तीसरे अध्याय में देखते हैं कर्म योग की और गहराई। प्रथम श्लोक से लेकर आठवें श्लोक तक ज्ञान योग और कर्म योग की आवश्यकता बताई है। नौवें श्लोक से लेकर सोलहवें श्लोक तक यज्ञ आदि कर्मों की आवश्यकता स्पष्ट की है। सत्रहवें श्लोक से लेकर चौबीसवें श्लोक तक ज्ञानवान और परमात्मा के लिए भी लोक संग्रहार्थ कर्मों की आवश्यकता। पच्चीसवें श्लोक से लेकर पैंतीसवें श्लोक तक अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने की प्रेरणा और 36वें श्लोक से लेकर 43वें श्लोक तक काम के निरोध का विषय, ये काम और क्रोध अग्नि के समान भोग भोगने से कभी न तृप्त होने वाले बड़े पापी है। काम क्रोध आदि से ज्ञान भी ढका है। यहां इस अध्याय के आरंभ में ही अर्जुन का एक प्रश्न है, क्योंकि जब दूसरे अध्याय में कर्मयोग की इतनी सुंदर बातें बताई तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है कि ज्ञान योग की जरूरत है या कर्मयोगी बनने की आवश्यकता है। दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? क्या ज्ञानी बनना जरूरी है या कर्म योगी बनना जरूरी है? हम सभी के मन में भी वही अर्जुन के प्रश्न उत्पन्न होते ही है। और इसी तरह क्योंकि आत्मा का ज्ञान दिया और साथ में कर्म योग की बात बताई, तो कहा ज्ञान योग श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है। भगवान इतना सुंदर हर एक प्रश्न का उत्तर देते हैं सटीक, और फिर कहा भगवान ने ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग है और योगियों के लिए निष्काम कर्म मार्ग है। दोनों ही मार्गों के अनुसार कर्म तो करना ही पड़ता है, ये नहीं कि ज्ञानियों को कर्म नहीं करना पड़ता है। दोनों ही मार्गों के अनुसार कर्म करना तो अनिवार्य है। सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करते हैं। जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके, जब मन से सर्वथा अनासक्त होकर कर्मेंद्रिय से कर्मयोग का आचरण करता है तथा अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए आध्यात्मिक पुरुषार्थ में उन्नति करता है, वही श्रेष्ठ है। समझ में आया क्या कहना चाहते हैं भगवान? ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग है, योगियों के लिए निष्काम कर्म मार्ग है। कर्म दोनों हिसाब से करना ही पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान को कर्म के साथ जोड़ता है, बहुत सुंदर बात यहां कही है, ज्ञान खाली सुनने सुनाने के लिए नहीं है, लेकिन ज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हर कर्म में करना बहुत आवश्यक है। और ज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसका प्रमाण के कर्मेंद्रिय को अपने अधिकार में रखता है। कर्मेंद्रिय उसको नहीं चलाती है, लेकिन वो कर्मेंद्रिय के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त कर लेता है। उसको कहा जाता है कि ज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हर कर्म के अंदर, और तब हर कर्म कुशलता कुशल होता है, कर्म कुशल व्यक्ति बन जाता है। जहां कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार है, ये विषय विकार कर्मेंद्रिय को खींचती न हो, लेकिन अनासक्त भाव से कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार प्राप्त करके कर्मयोग का आचरण करने वाला, ये श्रेष्ठ है। न एक ज्ञानी श्रेष्ठ है, न खाली कर्म करने वाला श्रेष्ठ है, लेकिन जो ज्ञान और कर्म दोनों को जीवन में शामिल करता है, जो ज्ञान हर कर्म के आचरण के अंदर ले आता है, प्रैक्टिकल जीवन उसके आधार पर बनाता है, वो श्रेष्ठ है। इसीलिए कितनी सुंदर बात यहां भगवान ने कही कि ज्ञान खाली सुनने सुनाने के लिए नहीं, ज्ञान प्रैक्टिकल जीवन में ला करके उस ज्ञान की शक्ति से कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार प्राप्त करना और फिर कर्मयोगी बन करके कर्म का आचरण करना, वो श्रेष्ठ है। और आगे भगवान कहते हैं, कर्म योग यही मानव का सनातन कर्तव्य है। और उसमें भगवान कहते हैं, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। यथार्थ कर्म किसको कहा गया? यथार्थ कर्म यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, जिससे यज्ञ पूर्ण हो। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी करते हैं वो बंधन है। यज्ञ पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर कर्म का आचरण कर। फिर भगवान कहते, प्रजापिता ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ जिसमें तुम लोगों का अनिष्ट न हो, विनाश रहित इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। इस यज्ञ के द्वारा देवताओं की उन्नति करो, अर्थात दैवी संस्कारों की वृद्धि करो। वे देवता तुम लोगों की उन्नति करेंगे और आराध्य संबंधी भोगों को उपलब्ध करेगा। बहुत सुंदर यहां बात कही है कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। यहां कर्म योग की और सुंदर व्याख्या भगवान बताते हैं। बाकी जो कुछ भी मनुष्य करता है ये बंधन है, तो क्या करे? कल से लेकर के हवन करना शुरू कर दे? अगर यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, उससे ही यज्ञ पूर्ण होता है, संपूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी मनुष्य करता है वो बंधन है। तो क्या करना चाहिए? कल से लेकर हवन करना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि वही यथार्थ कर्म योगी बनाता है हमें। बाकी जो कुछ भी इंसान करता है बंधन है। तो क्या करना चाहिए? कल से क्या करना चाहिए? यहां यज्ञ का भावार्थ समझने की आवश्यकता है कि जब कोई भी इंसान यज्ञ करता है तो उस हवन के अंदर अग्नि होती है और उस अग्नि के अंदर तीन चीजों को स्वाहा करना होता है, जौ, तिल और घी। तीनों चीजों को स्वाहा करते हैं तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति नया मकान लेता है, घर लेता है, तो वास्तु में क्या करता है? उस समय यज्ञ करता है ताकि घर का जो वाइब्रेशन है, यहां भी यह सूक्ष्म बात समझने की है। दूसरे अध्याय में व्यक्ति ने, परमात्मा ने स्वयं के वाइब्रेशन का शुद्धिकरण करने के लिए बताया, लेकिन तीसरे अध्याय के अंदर जैसे घर के वाइब्रेशंस को शुद्ध करने की बात है। तो जिस तरह से कोई भी घर ग्रह प्रवेश करते हैं तो उस समय यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। क्यों करते हैं? अगर ये बात पूछी जाए तो यही कहा जाता है कि घर के वातावरण के अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा अगर है, कोई नकारात्मक शक्ति अगर है, तो वो उस हवन से दूर हो जाती है और घर के वातावरण का शुद्धिकरण हो जाता है। अब सोचने की बात तो ये है कि ऐसे न जाने कितने यज्ञ हो गए, घर ग्रह प्रवेश करने के बाद दूसरे दिन से झगड़े आरंभ हो जाते हैं। तो क्या हुआ? ग्रह शांति नहीं हुई, ग्रह की शुद्धिकरण नहीं हुआ। इतना यज्ञ करने के बाद, इतना हवन कर दिया, जौ तिल घी स्वाहा कर दिया, उसके बाद भी शुद्धिकरण नहीं हुआ तो क्या कहेंगे? और भगवान कहते हैं यज्ञ ही कर्म है, बाकी सब बंधन है। भावार्थ ये है कि ये जीवन एक यज्ञ है, जीवन एक यज्ञ है जिसमें अग्नि है, ज्ञानाग्नि, ज्ञान अग्नि है। जब ज्ञान को जीवन में ले आते हैं, शामिल करते हैं, तब ये जीवन का शुद्धिकरण आरंभ होता है। और इस ज्ञानाग्नि के अंदर तीन चीजों को स्वाहा करना है। जौ, जो लंबा होता है, ये तन का प्रतीक है। तिल, सूक्ष्म होता है, मन का प्रतीक है। और घी, लिक्विड होता है, धन का प्रतीक है। हमारे जीवन के अंदर तन, मन और धन इन तीनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है और इसीलिए ये तीनों का स्वाहा करना बहुत आवश्यक है। तन को स्वाहा करना अर्थात तन के द्वारा जो बुरे कर्म बुरी आदतों के कारण होते हैं उन बुरी आदतों को करो स्वाहा, उन बुरे कर्म को करो स्वाहा, तो ये तन का शुद्धिकरण होता है। मन के अंदर जो बुरे विचार है उन बुरे विचारों को इस ज्ञानाग्नि के अंदर करो स्वाहा, अर्थात उसको परिवर्तन करना है, तो मन का शुद्धिकरण होने लगता है। और धन जिस रास्ते पर जा रहा है उन बुराइयों को करो स्वाहा, तो धन का शुद्धिकरण होता है। तो तन मन धन का जब शुद्धिकरण होने लगता तब जीवन के अंदर शांति होती है। जीवन का शुद्धिकरण होता है और ये प्रक्रिया ही यथार्थ कर्म है। ये प्रक्रिया शुद्धिकरण की प्रक्रिया ही यथार्थ कर्म योग है। जिस प्रक्रिया के अंदर शुद्धिकरण नहीं है वो कर्म कर्म योग नहीं है, वो कर्म भोग बन जाता है, वो कर्म बंधन बन जाता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि इसके अलावा मनुष्य जो कुछ भी करता है ये बंधन बनता है। और जहां आत्म शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है वो कर्म योग है यथार्थ रूप में। तो यज्ञ माना ये जीवन, जीवन का शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है। और इस प्रोसेस में कहा संग दोष से यज्ञ पूर्ति के लिए जीवन के शुद्धिकरण के लिए संग दोष से अलग रहकर कर्म का आचरण कर, क्योंकि मनुष्य को कर्म अगर विकृत होते हैं तो उसका कारण है संग दोष। संग को दोष कहा गया है। ये हमारे जीवन रूपी यज्ञ का शुद्धिकरण होने नहीं देता है, ये और भी अशुद्ध बना देता है। पहले के जमाने में जब माता पिता बच्चे पुत्र पौत्र सब इकट्ठे रहते थे जॉइंट फैमिली के रूप में, तो शाम का समय होता था और घर में छोटा सा अगर पोता है तो दादा उस पोते को लेकर घूमने जाते थे उसके अंगुली पकड़ करके। और कहां जाते थे, कहां जाते थे, मंदिर तक। और मंदिर जाकर के वहां पर भगवान की मूर्ति के सामने दादा ने प्रणाम किया, ये देख करके पोता भी प्रणाम करता है। अगर दादा ने साष्टांग प्रणाम किया तो ये देख करके वो पोता भी साष्टांग प्रणाम करता है। उसके बाद दादा ने अपनी जेब से एक रुपया निकाल करके दान पेटी में डाला, ये देख करके पोता क्या कहेगा, वो भी धोती खींचेगा, देव देव बोलना नहीं आता है, लेकिन उसको लगता है दादा ने डाला इसलिए मुझे भी डालना ही है। जब तक उसके हाथ में 10 पैसा न पकड़ाते उसको कोई मतलब नहीं, 10 पैसा 1 रुपया कितना है वो कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब उसके हाथ में 10 पैसा पकड़ा दिया और उसने अपने हाथों से दान पेटी में डाला जो बड़ा खुश होता है। ये संस्कार थे, संस्कार देने की एक प्रक्रिया थी। और फिर थोड़ी देर के लिए बैठते वहां मंदिर के आंगन में और फिर से वापस घर की ओर आ जाते थे। पहले दिन तन गया, धन गया, तो दूसरे दिन शाम होते ही मन पुनः जाता है वो पोते का। वो जल्दी तैयार होकर के आता है और अपने दादा की धोती खींचना चालू करता है। चलो चलो, उसको पूछो कहाँ जाना है, इशारे से कहते जय जय जाना है, जय जय जाना है, बोलना नहीं आ रहा है। लेकिन पहले दिन ये संस्कार दिए तो दूसरे दिन अपने आप उसका मन होता है कि पुनः जाना है मंदिर। और अगर दादा ने कह दिया कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, आज मैं नहीं जा सकता हूं, तो पोता दादी के पास जाता है, चलो चलो चलो। आखिर दादी को जाना पड़ता है और दादी जब ले जाती है, अब दादी का घुटना की तकलीफ है, तो पोता क्या करता है, पहले दिन तो साष्टांग प्रणाम किया था, अब देखता है दादी तो खड़ी होकर के हाथ जोड़ करके भगवान के आगे खड़ी है, तो थोड़ी देर तो वो देखेगा, फिर कहेगा साष्टांग प्रणाम करो करो। दादी कहेगी अरे तू कर ले, मेरी घुटना दर्द कर रहा है, फिर वो मान जाता है। खुद साष्टांग प्रणाम करने के बाद फिर साड़ी खींचता है, पैसा दो डालना है इसके अंदर, पैसा दो डालना है इसके अंदर। और दादी ने अगर कह दिया कि मैं तो पर्स ही भूल गई, मेरे पास पैसा नहीं है, अरे ऐसे कैसे चलेगा, पैसे डाले भी घर, उधम मचाना चालू करता है वहां मंदिर में, पैसा तो डालना ही पड़ेगा, ये प्रक्रिया है, वो सिखा रहा है। आखिर कोई दूसरा व्यक्ति जब इसका उधम देखते हैं तो कहते लो पकड़ डाल, अभी तो डालता है, उसको बड़ी खुशी होती है मैंने पैसा डाला। उसके बाद थोड़ी देर वहां खेलता है और फिर वापस दादी के साथ घर आ जाता है। ये संस्कार होते थे, तन मन धन का शुद्धिकरण की प्रक्रिया चलती थी, ये यथार्थ कर्म योग था। लेकिन आज के युग में संस्कार कैसे दिए जाते हैं? आज दादा दादी कहीं गांव में है, माता पिता बच्चे कहीं शहर में रह रहे हैं, अब माता पिता दोनों ही काम पर जाते हैं, बच्चे घर में अकेले हैं, माँ काम से आती है वो अपना रसोई घर में घुसती है, कहाँ मंदिर ले जाने का टाइम भी होता है। कभी कभार 6 महीने में एक बार, साल में एक बार कभी ले जाते हैं कोई मंदिर में, और शाम को जब पिता घर लौटता है तो उस अपने टेंशन में है, और टेंशन में होने कारण जैसे ही घर में आता है इतना सर दर्द उसका कर रहा है कि बच्चे को बुलाकर कहता है कि देख नीचे जा और वो पान की दुकान से एक सिगरेट का पैकेट लेकर के आओ। अब वो बच्चे को पैसा दिया, तन गया, धन गया, सिगरेट का पैकेट खरीदा और वो सिगरेट का पैकेट लेकर के ऊपर आया और पिता ने धुआं निकाला और कहा माथा हल्का हो गया। अब दूसरे दिन वो बच्चे का मन होगा कि ये धुआं निकालने से माथा कैसे हल्का होता है, मैं भी ट्राई करके देखूं, होता है कि नहीं होता है। ये आज के संस्कार है, ये आज के संस्कार है। और इसीलिए जहां तन मन धन तीनों ही गलत रास्ते से जा रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहा है, जीवन के अंदर शांति नहीं है। ये मनुष्य जीवन को बांधते हैं, ये बंधन क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए कहा भगवान ने कि आज मनुष्य जीवन के अंदर हर कर्म उसको बांधने वाला बन गया। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, बाकी सब कुछ बंधन है। अर्थात जीवन के शुद्धिकरण के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वही यथार्थ कर्म है, वही कर्म योग है, बाकी सब कुछ कर्म बंधन में इंसान को बांधने वाला है। कितनी सुंदर और गहरी बात बताई है यहां पर। तन मन धन का कितना गहरा संबंध है। आज के दुनिया के अंदर मनुष्य को लगता है अधिक से अधिक धन कमाए, अधिक से अधिक धन कमाए, चाहे कोई भी रास्ता ले। लेकिन एक बात मैं आज आपसे पूछती हूं, यहां जो नसीब में होगा उतना ही धन आएगा कि उससे अधिक आएगा? नसीब में जितना है उतना ही आएगा या उससे अधिक आएगा? कितना भी प्रयत्न कर लो, किसी भी विधि को अपना लो, लेकिन जितना यहां होगा उतना ही आएगा या उससे अधिक आएगा? क्या कहेंगे आप? क्या विचार है आपका? उतना ही आएगा ना, उससे अधिक तो नहीं आएगा। तो इसीलिए कहा कि मनुष्य के नसीब में जितना है उतना ही जब आना है, तो चाहे अच्छे कर्म के मार्ग से उसको लो, चाहे बुरे कर्म के मार्ग से लो, आना तो उतना ही है। लेकिन आप अपनी जीवन की क्वालिटी क्या बना रहे हो? चलो मान लो कि उससे अधिक आ भी गया, गलत रास्ते अपना करके आ भी गया, वो धन सुख का अनुभव करने नहीं देता है। वो धन उसी मार्ग पर जाता है या बुरी आदतों के कारण उसी मार्ग पर जाएगा, या कोई ना कोई ऐसा नुकसान होगा जिस मार्ग पर जाएगा। उस धन का उपयोग जीवन के अंदर आप नहीं कर सकेंगे। इसलिए कहा यहां जितना लिखा है उतना ही आएगा, उससे अधिक अगर आ भी गया तो वो सुख का अनुभव करने नहीं देगा, क्योंकि वो आपके नसीब में है ही नहीं, तो वो वैसे ही चला जाएगा, वैसे ही चला जाएगा, बुरी आदतों में चला जाएगा या कहीं और तरीके से चला जाएगा। उसका सुख नहीं भोगने, वो नसीब में है ही नहीं तो कहां से सुख भोगेंगे? तो फिर अनिति का पैसा क्यों घर में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं? अगर वो नसीब में नहीं है तो उसको लाने का प्रयत्न करने क्या ये समझदारी है? ये समझदारी तो है ही नहीं ना। उसके बदले नीति का पैसा आएगा तो कम से कम जीवन रूपी यज्ञ तो शुद्ध रहेगा। इसलिए कहा कि जितना नसीब में है नीति से उसको अगर लाया गया तो जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध रहेगा, यथार्थ कर्म योगी जीवन बनेगा। अनीति के माध्यम से अगर उससे अधिक लाने का प्रयत्न किया तो भी वो आपके जीवन में सुख का अनुभव नहीं करने देगा। अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, कैसी जीवन की क्वालिटी जीनी है। तो तन मन धन ये जीवन रूपी यज्ञ के अंदर ज्ञानाग्नि के माध्यम से, ज्ञानाग्नि यानी समझ को प्रज्वलित करो। ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करना यानी समझ को विकसित करो, और उस समझ के आधार पर आप जो करेंगे वो यथार्थ सुख का अनुभव कर, शुद्धिकरण का अनुभव कराएगा। फिर जो आगे भगवान ने कहा है, प्रजापिता ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा, इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त करो। यानी ये जीवन की शुद्धिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से तुम जीवन में वृद्धि को प्राप्त करो, ये वरदान मिला हुआ है। यह यज्ञ यानी ये जीवन रूपी यज्ञ के शुद्धिकरण की प्रक्रिया में तुम लोगों का अनिष्ट नहीं होगा। विनाश रहित इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। इस यज्ञ के द्वारा देवताओं की उन्नति करो, देवताएं माना दैवी संस्कारों की वृद्धि करो। इस जीवन रूपी यज्ञ में दिव्य संस्कारों की वृद्धि करो, उसको विकसित करो। वे दैवी संस्कार तुम लोगों की उन्नति करेगा, वो हमेशा जीवन को उन्नति के मार्ग पर ले जाएंगे और आराध्य संबंधी भोगों को उपलब्ध करेगा। कितनी सुंदर बात यहाँ भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि फैमिली लाइफ में किस तरह से रहना है, फैमिली लाइफ के अंदर कर्मयोगी जीवन कैसे बनाना है, कैसे दैवी संस्कारों को अपने जीवन रूपी यज्ञ में विकसित करना है और हर आराध्य संबंधी भोगों को वो उपलब्ध कराएगा। इतनी ऊंची बात भगवान ने कह दी कि फैमिली लाइफ में। दूसरे अध्याय में तो व्यक्तिगत जीवन की बात कही, लेकिन तीसरे अध्याय में फैमिली लाइफ में किस तरह से कर्म योगी बनना है इस बात का विधान स्पष्ट किया भगवान ने। और फिर उसके बाद बहुत सुंदर बात कही है कि अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, यह यज्ञ कर्मों से ही उत्पन्न होने वाला और पूर्ण होता है। कर्म वेदों से उत्पन्न होता है, वेद अविनाशी परमात्मा ज्ञान सागर से प्राप्त होता है। सोचने की बात है, फैमिली लाइफ यज्ञ की बात भगवान कर रहे हैं और यहाँ भगवान खेती बाड़ी की बात कर रहे हैं कि अन्न की उत्पत्ति, यानी खेती बाड़ी जो है अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, माना बारिश चाहिए। और इसीलिए बारिश अगर नहीं होती है तो लोग यज्ञ करते, कि गीता में कहा है भगवान ने कि अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि नहीं हुई तो यज्ञ करो। अब सोचने की बात तो ये है कि कहां भगवान जीवन में कर्म योग की बात कर रहे हैं, जीवन को शुद्धिकरण करने की बात कर रहे हैं और फिर सीधा एकदम जंप मारेंगे खेतीबाड़ी की ओर। नहीं, भगवान कोई कृषि सिखाने नहीं आए थे, लेकिन यहां भगवान जो बात कह रहे हैं वो और भी गहराई लिए हुए हैं कि अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। अन्न यानी जो जीवन के अंदर मन को जो खुराक चाहिए, मन का खुराक क्या है? अच्छा चिंतन। तो मन को जो खुराक चाहिए, अन्न की चाहिए, लेकिन वो अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से, यानी कृपा वृष्टि। इतने अच्छे कर्म हो जो अपने आप हर एक के आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और उस आशीर्वाद से मन के अंदर प्रसन्नता, ये सबसे बड़ा खुराक है मन के लिए। तो मन की प्रसन्नता का खुराक तभी प्राप्त होगा जब आशीर्वाद मिलती है। और वृष्टि कब होती है? यज्ञ से होती है। अर्थात लोगों की आशीर्वाद कब प्राप्त होती है? जब जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध हो, शुद्ध भावनाएं हो, शुद्ध मनोवृत्ति हो, शुद्ध जीवन हो, उसके प्रति अपने आप स्वतः आशीर्वाद निकलता ही है। तो ये यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्मों से उत्पन्न माना जीवन में आप अच्छा कर्म करो तो ये जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध होगा और अपने आप सबकी आशीर्वाद प्राप्त होगी, जिससे जीवन के अंदर प्रसन्नता, ये खुराक है। वैसे भी आज की दुनिया में लोग, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जीवन में खुश रहो, प्रसन्न रहो, टेंशन को लेकर न चलो। टेंशन अनेक बीमारियों का कारण है। वहां तक साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 70% बीमारी का कारण है टेंशन। और जितना व्यक्ति खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, तो बड़े से बड़ी बीमारी भी चली जाती है, उसकी भोगना का अनुभव नहीं करा सकती है। अभी तो डॉक्टर्स ने कई रिसर्च किया है कि मनुष्य के स्वभाव में जो नकारात्मकता है वो कैसे कई बीमारियों को उत्पन्न करने का कारण है। जो कभी नहीं सुनी ऐसी बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती है। और जब व्यक्ति प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, तो बड़े से बड़ी बीमारी भी ठीक होने लगती है। इसलिए आज की दुनिया के अंदर लाफिंग क्लब्स निकले हैं कि लोग बगीचे में जाकर के खुश रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, लाफिंग थेरेपी करते हैं कि खुश रहेंगे तो जीवन के अंदर कई बीमारियां ठीक हो जाएगी। जितना व्यक्ति टेंशन में रहेगा बीमारियां बढ़ती जाएगी। और गीता के अंदर भगवान ने यही बात कही है कि अन्न की उत्पत्ति माना मनुष्य के मन का जो खुराक है वो है प्रसन्नता, खुशी, उमंग, उत्साह। लेकिन ये मन का खुराक जो है उसके लिए आशीर्वाद चाहिए। और आशीर्वाद कब मिलेगी? यज्ञ से, यानी जीवन रूपी यज्ञ का जब शुद्धिकरण करेंगे तब अनेकों की आशीर्वाद स्वतः मिलने लगेगी। और ये जीवन रूपी शुद्धिकरण की प्रक्रिया किससे होगी? कर्मों से। और कर्म को श्रेष्ठ करने के लिए वेद, वेदों का ज्ञान चाहिए। वेदों में क्या है? ज्ञान है। तो ज्ञान जितना व्यक्ति आत्मसात करता जाता है, जितना ज्ञान को अपने जीवन के अंदर हर कर्म में अप्लाई करना शुरू करता है, तब वो कर्म उसके स्वतः श्रेष्ठ होते हैं। और वो ज्ञान दाता कौन? तो कहा ज्ञान का स्रोत, तो ज्ञान का सागर परमात्मा ही है। इसलिए अविनाशी परमात्मा ज्ञान सागर से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस परमात्मा ज्ञान को जब हम अपने कर्मों में शामिल करते हैं तो कर्म श्रेष्ठ होने लगते हैं। और वो कर्म ही मनुष्य जीवन रूपी यज्ञ का शुद्धिकरण करता है, जिससे अनेकों को सुख दे सकेंगे और अनेकों की कृपा वृष्टि स्वतः हम अपने जीवन के अंदर अनुभव करेंगे। और ऐसी कृपा वृष्टि जब होती है तब जीवन के अंदर प्रसन्नता, ये जो मन का खुराक है, ये जो आत्मा का खुराक है, ये एक नेचुरल रूप से आने लगता है। लाफिंग थेरेपी को तो अपना लिया, बगीचे में जाके हंस लिया, और घर में आए तो वही टेंशन। क्या फायदा होगा फिर? क्या फायदा होगा? इसीलिए निरंतर हमारा मन प्रसन्न रहे ऐसी विधि को अपनाएं। खास करके फैमिली लाइफ में, जब भगवान फैमिली लाइफ की बात कर रहे हैं तो फैमिली लाइफ के अंदर आवश्यकता क्या है? व्यवहारिक जीवन के अंदर कैसे कुशल रह सकते हैं, ये विधि भगवान बताते हैं। बाकी कृषि का ज्ञान नहीं दे रहे भगवान। आज मनुष्य कितना भी अगर अनावृष्टि हुई और यज्ञ कर लिए, और अगर मान लो कि अतिवृष्टि हो गई तो फिर नुकसान। तो अनावृष्टि भी नहीं चाहिए, अतिवृष्टि भी नहीं चाहिए। कई बार अनेक यज्ञ करने के बाद भी बारिश नहीं आती है। अरे गीता में कहा है, गीता में कहा है, गीता में, लेकिन गीता में क्या कहा है? तभी कहा गीता जीवन जीने की कला सिखाती है। सर्वश्रेष्ठ कला जीवन जीने की कला है। ये गीता हमें सिखाती है हर कदम में। और इतनी सुंदर बात कहने के बाद फिर आगे भगवान कहते हैं, इस सृष्टि चक्र के अनुसार जो नहीं बरतता है वो पापायु है। माना फैमिली लाइफ में कैसे कर्म योग का आचरण करना है अगर ये नहीं किया गया, इस संसार चक्र के हिसाब से नहीं चले तो वो पापायु है, पापी है। इंद्रियों का सुख चाहने वाला व्यर्थ ही जीता है। हर घड़ी वो समझता है मेरे इंद्रियों को सुख मिले तो वो व्यर्थ ही जीता है। अर्थात यज्ञ एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी विशेष विधि है जिसमें इंद्रियों को आराम नहीं है अपितु अक्षय सुख है, अति सुख की प्राप्ति होती। जब जीवन रूपी यज्ञ का शुद्धिकरण करते तो अक्षय सुख क्या होता है, अक्षय सुख की प्राप्ति होती। इंद्रियों का संयम के साथ इसमें लगने का विधान है। इंद्रियों का आराम चाहने वाला पापायु है, इसलिए आराम चाहने के बजाय संयम के साथ जब इंद्रियों को इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया में लगाते हैं, उस ज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जीवन के अंदर करते हैं तो अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। सुख कैसे, हर इंसान आज जीवन में क्या चाहता है, सुखी होना चाहता है ना। सुखी कैसे रहेगा, अक्षय सुख की प्राप्ति कैसे करेगा। मुझे एक बहुत सुंदर बात याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति भगवान की खूब भक्ति करता है, इतनी भक्ति करता है भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान पूछते हैं कि क्या चाहिए तुझे, मांगो। तो उस व्यक्ति ने कहा, भगवान मैं सदा सुखी होना चाहता हूं, दुखी होना नहीं चाहता, मुझे कोई ऐसी विधि बता दो मैं सदा सुखी हो, दुख नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, बस इतनी सी बात, कहां सदा सुखी होना चाहता। तो भगवान ने कावड़ दिया, कावड़ नहीं आता है जो श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर चले थे, कावड़ दिया और कहा ये कावड़ लेकर के जीवन में चलना, सदा सुखी हो जाएगा। वो व्यक्ति बड़ा हैरान हो गया, भगवान ये क्या पहली है, कावड़ लेकर चलने से सदा सुखी कैसे बनूंगा। फिर भगवान ने कहा, इस कावड़ में भी एक तरफ सफेद कपड़ा लगा हुआ है, एक तरफ काला कपड़ा लगा है, काला कपड़ा पीछे रखना, सफेद कपड़ा आगे रखना। कहा ये क्या पहली है, सफेद कपड़े में क्या है, काले कपड़े में क्या है। तब भगवान समझाते हैं कि जीवन एक यात्रा है और इस जीवन की यात्रा में तुम बहुत लोगों से मिलोगे, बहुत लोग मिलेंगे तुझे। हर एक इंसान के अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है। लेकिन जब तुम्हें कोई व्यक्ति की बुराई नजर आए तो काले कपड़े में पीछे डाल देना, और जब तुम्हें किसी की अच्छाई नजर आए तो ये सफेद कपड़े में आगे रख देना। और जब भी तुम उस व्यक्ति के साथ व्यवहार में आओ तो उसकी अच्छाई के आधार पर ही व्यवहार करना, वो पीछे से उसकी कमजोरियों को ला करके व्यवहार में नहीं आना, तो सदा सुखी रहेगा। सचमुच व्यक्ति को एक सीक्रेट मालूम हुई जीवन में सदा सुखी रहने की, और उसने वो कावड़ लेकर चलना शुरू किया, सफेद कपड़ा आगे काला कपड़ा पीछे। हमेशा जब भी किसी की अच्छाई दिखाई दे सामने रख देता था सफेद कपड़े में, और उसी के आधार से व्यवहार करता था, उसके साथ व्यवहार में आता था। और किसी की अगर बुराई नजर आ भी जाए तो पीछे काले कपड़े में डाल देता था, उसको सामने लाता नहीं था कभी भी, और हरेक की अच्छाइयों को देखते हुए उसके साथ व्यवहार करने लगे फैमिली लाइफ में, तो नेचुरल है सदा सुखी तो रहेगा ही रहेगा। और सचमुच बड़ा सुखी रहा, कई सालों तक बहुत अच्छा जीवन जिया उसने, सबकी अच्छाई देखते रहा। इसीलिए श्री कृष्ण के हाथ में भी सुदर्शन दिखाया है। यही अंगुली में सुदर्शन दिखाते हैं, क्यों? क्योंकि यही अंगुली दूसरे की बुराई को पॉइंट करने का काम करता है। उसके ऊपर सुदर्शन चढ़ा दो, सुदर्शन, हर एक की अच्छाइयों का दर्शन करना शुरू करो, उसको घुमाना चालू करो, तो ये कभी किसी को पॉइंट आउट नहीं करेगा, उसकी कमजोरी को पॉइंट आउट करने का काम नहीं करेगा। इसीलिए श्री कृष्ण ने भी हमेशा अपनी अंगुली पर सुदर्शन चक्र चढ़ाया। भावार्थ ये कि अगर हम भी अपनी अंगुली पर सुदर्शन चक्र चढ़ा दें, सबके अच्छाइयों का दर्शन करते हुए उसी के साथ व्यवहार में आएंगे तो क्या होगा, कितना सुंदर भाव है ये। बाकी ऐसे थोड़ी कोई चक्कर लेके चलता रहता था, मनोवृत्ति की बात है कि सुदर्शन चक्र चढ़ा दिया अंगुली के ऊपर। और हम सबको भी आज से यही दृढ़ संकल्प करना है कि आज से लेकर हम भी अपनी अंगुली, जो अनेकों की कमी कमजोरी पर चिंती रहती है, उस पर सुदर्शन चक्र चढ़ा देना है और उस सुदर्शन को आगे रखना है, उसी के आधार पर व्यवहार में आना है, उसी के आधार पर व्यवहार में आना है। सही बात है, जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। वो व्यक्ति बहुत साल तक बहुत अच्छा जीवन जीता रहा, एक दिन वो सोया हुआ था और अचानक जोर से भूकंप आया और भूकंप में हड़बड़ाहट में उठ गया और उठ करके दौड़ने लगा, अपना कावड़ उठाया और दौड़ने लगा और गलती से कावड़ उल्टा हो गया, काला कपड़ा आगे सफेद कपड़ा पीछे, और चलने लगा। जब भी किसी की बुराई दिखाई दे सामने रखता, अच्छाई दिखाई दे पीछे रख देता था, और व्यवहार जब करता था तो उस बुराई को लेकर के, उस कमजोरी को लेकर के ही व्यवहार करना शुरू कर दिया। तब से लेकर दुखी हो गया। आज मानव दुखी क्यों है जीवन के अंदर? आज मानव के दुख का कारण यही है कि वो अनेकों के बुराई को सामने रखते हुए उसके साथ व्यवहार करता रहता है। अच्छाइयों के आधार पर अच्छाई तो पीछे डाल दिए, और भगवान के मंदिर में जाकर गान क्या गाता है, हे प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, हे प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। अब भगवान हमें कहता है कि हे बंदे, तू भी किसी के अवगुण चित न धर, तू पीछे ये कावड़ बदली कर दे, फिर से बदली करने के लिए तैयार है, सुदर्शन चक्र चढ़ाने के लिए तैयार है, क्या कहेंगे? जो तैयार है जरा हाथ तो खड़ा करे। आज से हम अपना कावड़ बदली कर देंगे, काला कपड़ा पीछे सफेद कपड़ा आगे, और सबकी अच्छाइयों को चित पर रखते हुए उसके साथ व्यवहार। फैमिली लाइफ में सुखी रहना है, पारिवारिक जीवन के अंदर सदा सुखी रहना है, अक्षय सुख का अनुभव करना है, तो ये तरीका कितना सुंदर भगवान बताते हैं, एडॉप्ट करने जैसा है, कोई बड़ा नहीं है, सिंपल है। और ये सिंपल टेक्निक तो अपना ही सकते हैं हम। आगे भगवान बहुत सुंदर कहते हैं, जनक आदि ज्ञानी जन भी अनासक्त होकर सदा कर्म करते रहे। जनक माना यहां सीता के पिता जनक की बात नहीं है, जनक अर्थात जन्मदाता। और यहां जनक किसको कहा, योग ही जनक है, योग ही जनक है, जो हमारे भीतर के स्वरूप को जन्म देता है। योगी जब योग का आचरण करता है तो उसका आंतरिक स्वरूप निखरने लगता है, और जब वो स्वरूप निखरने लगता है तो एक नए स्वरूप का जन्म होता है। और योग से संयुक्त तो प्रत्येक महापुरुष जनक है, कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, संसार उसका अनुसरण करता है। तो इसीलिए योग को जनक बनाए, योग ही हमारा जन्मदाता है, जीवन के अंदर योग को ले आए। और योग माना क्या, ये तो कल हमने देखा, जीवन के अंदर बैलेंस। बैलेंस ही योग है। कर्म में जब बैलेंस ले आए, व्यवहार में जब बैलेंस को लेकर के आए, संतुलन लेके आए, तो हर प्रकार की कुशलता का अनुभव कराता है। इसलिए ऐसे योग को जनक बना दे व्यवहारिक जीवन के अंदर। बाकी योग माना योगा नहीं, आसन एक्सरसाइज कर लिया, उससे कर्म कुशलता नहीं आती है, व्यवहारिक कुशलता नहीं आती है। लेकिन परम सिद्धि को प्राप्त करना है तो जीवन के अंदर योग को जनक बना दो, जो अपने स्वरूप को निखारने लगता है और कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे महापुरुष जो आचरण करता है, संसार उसको देख करके फॉलो करता है, उसी को श्रेष्ठ मानता है। तो उसी को फॉलो करना ये हमारा कर्तव्य है। फिर आगे भगवान अर्जुन को बहुत सुंदर बात कहते हैं कि वास्तव में जीवन के अंदर जो संघर्ष होता है वो कब उत्पन्न होता है। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अंतरात्मा में चित्त का निरोध करके ध्यानस्थ होकर कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा ममता और संताप रहित होकर युद्ध कर। अंतरात्मा में चित्त का निरोध करके ध्यानस्थ होकर, ध्यान में बैठने की बात है, ध्यानस्थ होकर कर्मों को मुझ में अर्पण करके उस कर्म में से आशा ममता और संताप रहित होकर युद्ध कर। जीवन का संघर्ष कैसे करना है? वास्तव में सच्चा संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब ध्यान करते हैं। इसलिए आगे कहा, वास्तव में जब ध्यान करते हैं तभी युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है और काम क्रोध राग द्वेष आशा तृष्णा आदि विकार बाधा के रूप में भयंकर आक्रमण करते हैं। इनको मिटाते हुए अंतरात्मा में सिमटते जाना और ध्यानस्थ होते जाना ही यथार्थ युद्ध है। जो दोष दृष्टि रहित होकर श्रद्धा के साथ इस युद्ध में रत रहता है वह कर्मों के बंधन से छूट जाता है। बार बार यहां भगवान ने युद्ध करने की बात की है। युद्ध करना माना कोई हिंसक युद्ध की बात नहीं है। कल भी हमने देखा कि अहिंसक युद्ध की ओर भगवान प्रेरित कर रहा है। फिर ये युद्ध शब्द क्यों प्रयोग करता है भगवान? जैसे आज घर के अंदर एक छोटा बच्चा हो और वो गली में खेलने जाता है अपने दोस्तों के साथ, और जैसे ही वो बच्चे खेल रहे होते और कुछ वहां बड़े लड़के आ जाए और बड़े लड़के अपनी दादागिरी के साथ कहने लगते, चलो हटो हटो हटो, हम यहां खेलेंगे। अब वो बेचारे छोटे छोटे बच्चे क्या कर सकते हैं बड़े लड़कों के आगे, वो मायूस होकर के साइड में हो जाते हैं और बड़े लड़के खेलने लगते हैं। ये बेचारे देखते रहते हैं, खेल नहीं पाते हैं। घर में आकर के आपका बच्चा आपको शिकायत करता है, आज भी वो बच्चे आ गए, वो लड़के आ गए, हमने हमको खेलने नहीं दिया, हमको हटा दिया वहां से, शिकायत करता है। हर रोज अगर उसकी एक ही शिकायत हो तो आप अपने बच्चे को क्या कहेंगे? रोज रोज अगर एक ही शिकायत करेगा तो क्या कहेंगे अपने बच्चों को? यही कहेंगे, अरे मारो गोली, वहां क्यों खेलने जाते हो, कहीं और नहीं खेल सकते? तुम्हें मालूम है कि वहां वो लड़के लोग आने वाले, तुम लोगों को खेलने नहीं दे, तो दूसरी कोई जगह ढूंढो खेलने के लिए। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अरे मारो गोली, छोड़ो उस जगह को, यही कहेंगे। अब मारो गोली का मतलब ये थोड़ी है कि बंदूक उठाकर गोली मारने के लिए कहा है, मुहावरा है। ठीक इसी तरह भगवान भी कहते हैं युद्ध कर, अर्थात छोड़ो इन बातों को। जो बातें तुम्हें अंदर परेशान कर रही है, जो बातें तुम्हारे मन को विचलित कर रही है, उनको छोड़ो, युद्ध करो, उसके साथ संघर्ष करके उसको समाप्त करो, विधि ढूंढो। रोज रोज अगर वो परेशानी जीवन में आ रही है तो उसको मिटाने की विधि क्या है, उसको सोचो और उसको छोड़ो। सिंपल सी बात ही मुहावरा है। और इसीलिए भगवान ने कहा, वास्तव में युद्ध तभी खड़ा होता है जब ध्यान में बैठते। आज हर एक व्यक्ति की शिकायत क्या होती है, ध्यान नहीं लगता है। ध्यान में बैठना तो चाहते हैं, ध्यान करना भी चाहते हैं, लेकिन मन भटक जाता है, मन इधर उधर चला जाता है। तो ध्यान कैसे किया जाए, ध्यान कैसे करें? मन कहां भटकता है, कभी देखा मन का पीछा करके कि मन अगर जाता है तो कहां जाता है? देखा गया कि मनुष्य का मन हमेशा ध्यान में जब बैठते हैं तो मनुष्य का मन हमेशा कोई न कोई इंद्रियों के आकर्षण के पीछे ही जाता है। दिन भर में जिन इंद्रियों की चंचलता हुई है, मान लो किसी से बात करते करते कोई बात मुख से निकल गई जो आपको उसको कहना नहीं चाहिए था, निकल गई, स्वाभाविक। उसके बाद कर्म में व्यस्त हो गए, सारी बात भूल गई। उसके बाद जैसे ही शांत चित होकर के ध्यान में बैठने का प्रयत्न किया कि वो व्यक्ति याद आएगा, वो बात याद आएगी, और फिर आएगा, अरे मैंने इसको ये बात तो कह दी है, अब उसने जाकर फलाने को सुना दिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, अब उसको जाकर मुझे बताना पड़ेगा मेरा भाव तो ऐसा था ही नहीं। ध्यान चला गया, कहां गया? ये मुख ने जो चंचलता की उसके पीछे गया। आंखों द्वारा कुछ देख लिया, देखते समय स्वाभाविक रीति से देख लिया, उसके बाद कर्म में व्यस्त हो गए, भूल गए सारी बात। लेकिन जब शांत चित होकर के भगवान को याद करने बैठो, ध्यान करने बैठो, कि वो दृश्य याद आता है, फिर आता है मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं गलत हो ही नहीं सकता हूं। मन चला गया, कहां गया? ये आंखों ने जो चंचलता की उसके पीछे गया। कानों द्वारा कोई बात सुन ली, सुनते समय स्वाभाविक रीति से सुन लिया, कर्म में व्यस्त हो गए तब सारी बात भूल गए। लेकिन जैसे ही शांत चित होकर भगवान को याद करने बैठो, कि मन जाता है कि इसने मुझे ये बात जो की, आखिर इस बात का मतलब क्या था, इसका भावार्थ क्या था, सारा भाव मतलब निकालना चालू करते, मन चला गया, कहां गया? ये कानों द्वारा जो चंचलता हुई उसके पीछे गए। तो मनुष्य का मन हमेशा कोई न कोई इंद्रियों के पीछे ही जाता है, तभी युद्ध करना पड़ता है उस मन को वापस खींचने के लिए और ईश्वर में लगाने के लिए, यह संघर्ष होता है। इसीलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं, चित्त का निरोध करके, ध्यानस्थ होकर, कर्मों को मुझ में अर्पण करके समर्पित भाव ले आओ, आशा ममता संताप रहित होकर युद्ध कर। संघर्ष जीवन का वो तो करना ही पड़ेगा ध्यान में, और वास्तव में जब ध्यान करते हैं तभी युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है, और उसी समय काम क्रोध राग द्वेष आशा तृष्णा आदि विकार भयंकर रूप में उत्पन्न होते हैं, आक्रमण करते हैं। इसको मिटाते हुए अंतरात्मा में सिमटते जाना, आत्मा के वास्तविकता में सिमटते जाना, सतोगुण स्वरूप में समा जाना, यही तो संघर्ष करके अपनी एकाग्रता को विकसित करना है। और जो दोष दृष्टि रहित होकर श्रद्धा के साथ ईश्वर को श्रद्धा के साथ जो याद करता है, वही कर्मों के बंधन से छूट जाता है। कितनी सुंदर बात भगवान ने यहां कही। उसके बाद आगे भगवान को प्रश्न पूछता है अर्जुन, जो हमारे मन के अंदर भी प्रश्न हो सकता है, और भगवान से पूछते हैं अर्जुन कि हे प्रभु, ये मनुष्य किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करते, क्यों करता है पाप, क्यों पाप करता है? आपके मन में भी आता होगा, ये मनुष्य पाप क्यों करता है, किससे प्रेरित होकर ये पाप का आचरण करते हैं? तो भगवान बहुत सुंदर जवाब देते हुए कहते हैं, रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध अग्नि के समान है। अनेक जो कामनाएं हैं और वो कामना पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध ये अग्नि के समान है, राग द्वेष उसके पूरक है, ये ज्ञानियों के निरंतर बैरी है। ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन की धारणा में आने नहीं देता है। अच्छी लगती ये बातें, आज जो बातें सुनी अच्छा लगता है, लेकिन उसको आचरण में आने नहीं देते हैं। काम से ज्ञान ढका हुआ है, मन बुद्धि इंद्रियां इसके वास स्थान है। कहां रहते हैं ये काम और क्रोध, उसके वास स्थान कहां है? तो कहा मन बुद्धि और इंद्रियां इसके वास स्थान है। इसीलिए अर्जुन तू पहले इंद्रियों को संयत कर, पहले इंद्रियों को जीत, क्योंकि यह हृदय देश की अंतर जगत की लड़ाई है, ये बाहर की लड़ाई नहीं है, ये हिंसक युद्ध नहीं है, ये अंदर की लड़ाई है। और जो इंद्रियों को वश में करता है वह ज्ञान विज्ञान से पाप का नाश कर देता है। ज्ञान की शक्ति समझ और विज्ञान यानी मेडिटेशन से साइंस है, विज्ञान है, ये योग एक विज्ञान है। इसलिए कहा जाता वेयर साइंस एंड्स फ्रॉम देयर स्पिरिचुअल साइंस बिगिंस। तो ज्ञान और विज्ञान से पाप का नाश कर देता है। कितने सुंदर तरीके से ये बात समझाई भगवान ने अर्जुन को कि मनुष्य पाप का आचरण क्यों करता है। तो कहा रजोगुण से उत्पन्न, क्योंकि राजसी स्वभाव हो गया, सात्विकता नहीं रही, राजसी स्वभाव हो गया, तो राजसी अभी तो तामसी हो गया है। इसलिए युद्ध बहुत अधिक होता है, संघर्ष जीवन के अंदर चरम सीमा पर पहुंच गया है। लेकिन जब रजोगुण था तभी भी काम और क्रोध अग्नि के समान, राग द्वेष उसके पूरक, और ये सब कहां रहते हैं? मन बुद्धि इंद्रिया इसके वास स्थान है, इसीलिए ये चंचलता करता रहता है। और यही चंचलता के आधार से पाप मनुष्य करता है। इसीलिए इंद्रियों को संयम में लाओ, और ये हृदय देश की अंतर जगत की लड़ाई है, उसको वश कर। फिर आगे भगवान को अर्जुन पूछता है दूसरा सवाल, जो हमारे मन में भी बहुत स्वाभाविक आता है, और क्या है? क्या हम मन बुद्धि इंद्रियों को संयत कर पाएंगे? इज इट इजी? इतना सहज है मन बुद्धि और इंद्रियां को जीतने की बात? जब भगवान ने कही कि हे अर्जुन तुम मन बुद्धि और इंद्रियों को संयम में ले आओ, तो अर्जुन पूछता है क्या यह सहज है, इसको संयम में ला सकते हैं? तो बहुत सुंदर भगवान कहते हैं, अर्जुन इस शरीर से परे इंद्रियां है, और इंद्रियों से परे मन है जो सूक्ष्म है, मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से परे तुम स्वयं सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा हो। स्वयं के आत्म बल को समझकर बुद्धि के द्वारा अपने मन को वश में कर, और इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मारो। इंद्रियों के द्वारा यही आत्मा को मोहित करता है। समझ में आया कैसे जीतना है, कैसे संयम में ले आना है? के ऊपर से चला गया इस बात को भगवान ने, ये बात जो कही मैं एक कहानी के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगी कि एक बार एक मुसाफिर था, और वो मुसाफिर के पास बहुत सुंदर हुष्ट पुष्ट घोड़ा था, और वो घोड़ा बड़ा चंचल था, तो वो मुसाफिर एक राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि हे राजन, मेरे पास बहुत अच्छा घोड़ा है, हुष्ट पुष्ट घोड़ा है। घोड़ा दिखाता है, बहुत सुंदर घोड़ा, लेकिन ये घोड़ा चंचल बहुत है। मुसाफिर राजा से कहता है, अगर आपके पास ऐसा कोई उस्ताद हो जो इस घोड़े को वश कर सके तो मैं घोड़ा आपको फ्री में दे दूंगा। राजा बड़ा खुश हुआ घोड़ा देखते ही और कहा, मेरे पास तो एक से एक उस्ताद है जो ये घोड़े को वश कर सकता है। तो मुसाफिर ने कहा, ऐसे नहीं, आप एक काम करो, सारे उस्तादों को राज्य भर से बुला लो और एक दिन निश्चित करते हैं, बड़ा मैदान हो जहां सारे राज्य के लोग भी, प्रजा भी आकर के बैठे, देखे कि कैसे उस्ताद एक घोड़े को वश करते हैं। और उसमें ये सारे उस्ताद में से जो उसको वश करेगा तब मैं घोड़ा दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। राजा ने सोचा इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसने कहा ठीक है, चलो एक दिन निश्चित करते हैं। और ऐलान कर दिया कि फलाने दिन घोड़े को वश करने के लिए सारे राज्य भर से उस्ताद आएंगे और प्रजा भी चारों ओर बैठ जाए मैदान के और देखे कि उस्ताद कैसे वश करते हैं। निश्चित दिन पर सारे उस्ताद पहुंच गए और उस ग्राउंड में पहुंच गए जहां घोड़े को वश करना था। प्रजा भी पहुंच गई देखने के लिए कि कैसे इस घोड़े को वश करते हैं। सब बैठ गए, एक के बाद एक सारे उस्ताद जाने लगे घोड़े को वश करने के लिए। लेकिन जैसे ही एक उस्ताद जाता है घोड़े को वश करने के लिए, अगर आगे से जाता है तो घोड़ा दोनों पैर ऊपर उछाल करके मार गिराता है, और अगर कोई पीछे से जाता है तो पीछे से लात मार करके उसको गिरा देता है, नजदीक नहीं आने देता है किसी को, इतना चंचल, इतना अलर्ट। धीरे धीरे करके सारे उस्ताद फेल होते गए, कोई भी उस घोड़े को वश नहीं कर पाया। राजा, जब सारे उस्ताद फेल हो गए तो राजा ने कहा, मेरे राज्य में कोई भी ऐसा उस्ताद नहीं घोड़े को वश कर सके। प्रजा को पूछा, भाई आप सब में कोई इस घोड़े को वश कर सकते हैं? काफी देर से राजकुमार इस दृश्य को देख रहा था। राजकुमार ने राजा से कहा, आप अगर स्वीकृति दो तो मैं इस घोड़े को वश करूं। राजा ने कहा, जहां उस्ताद नहीं कर सके तुम तो कैसे करोगे? कहा, आप मुझे स्वीकृति तो दो, शायद मैं कोशिश करूं। तो जब वो जाता है, राजकुमार उस काफी देर से देख रहा था कि घोड़े को जिस दिशा में खड़ा किया था लंबी परछाई गिरती थी, और जो उस परछाई के नजदीक आता था तो घोड़ा भड़कता था, इसलिए किसी को नजदीक नहीं आने देता था। राजकुमार ने सबसे पहले घोड़े की दिशा चेंज किया, अब परछाई पीछे गिरने लगी, अब घोड़े को कुछ नहीं दिखता है, और पीछे से जाकर उसके ऊपर चढ़ करके लगाम खींच लिया, और लगाम खींच लिया तो घोड़ा वश हो गया। यही बात यहां भगवान अर्जुन को कहना चाहते हैं कि अपने मन को, अपने इंद्रियों को ध्यान में अगर एकाग्र करना है तो कहा, हे अर्जुन, शरीर से परे इंद्रियां हैं और इंद्रियों से परे मन है जो सूक्ष्म है, और मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से परे तुम स्वयं सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा है। अब विधि बताता है, स्वयं के आत्मबल को समझकर, बहुत सुंदर बात यहां, स्वयं के आत्मबल को समझकर, आत्मा वो राजकुमार है, तो आत्मबल को समझकर बुद्धि के द्वारा मन को वश करना है। बुद्धि लगाम है, लगाम को खींचना है तब मन रूपी घोड़ा वश में होगा। लेकिन जो परछाई है वो परछाई कौन सी है, तो कहा काम रूपी दुर्जय शत्रु को मारो। ये कामनाओं की परछाइयां, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, ये कामनाओं की परछाइयां जो है ये दुर्जय शत्रु है, उसको पहले मारो। यानी दिशा बदली करो। मारना माना मारेंगे कैसे, इसीलिए कहा जाता है मन की इच्छाओं का दमन नहीं करो लेकिन मारो अर्थात मोड़ो, उसको एक दिशा दे दो, अलग दिशा में खड़ा कर दो उसको, उस मन रूपी घोड़े को। और इंद्रियों के द्वारा यही तो आत्मा को मोहित करता है, इसलिए इंद्रियां चंचल होती रहती है, इसलिए दिशा बदली करना जरूरी है। ध्यान में जब बैठो तो ध्यान में बैठने के लिए अपने मन को एक अलग दिशा देने की जरूरत है। नकारात्मक दिशा, आसक्ति वाली दिशा होगी तो ये वश नहीं होगा, लेकिन मन को दिशा देना माने एक सकारात्मक दिशा देना। मन को सकारात्मक दिशा देने से मन शांत होगा और तब बुद्धि के द्वारा बुद्धि रूपी लगाम को खींचो और मन रूपी घोड़ा वश में हो जाएगा। तो मन बुद्धि इंद्रियों को संयत करने की ये विधि भगवान ने बताई, कितनी सुंदर विधि बताई। उसके बाद चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग, तो तीसरे अध्याय में पारिवारिक व्यवहारिक जीवन के अंदर किस तरह से मन को एकाग्र करना है, ध्यान में लगना है और कर्म योग का आचरण कैसे करना है, यथार्थ कर्म योगी कैसे बनना है, मन बुद्धि इंद्रियों को वश में कैसे करना है, उसकी विधि भगवान ने बताई, कितनी सुंदर विधि बताई। तो सारा अध्याय स्पष्ट हो जाता है मन के अंदर कि हाँ, भगवान ने तीसरे अध्याय में व्यवहारिक जीवन को जीने की कला सिखाई है, पारिवारिक जीवन के। ये जीवन एक यज्ञ है और ये जीवन रूपी यज्ञ को शुद्ध करने की आवश्यकता है, तभी हमारा मन प्रसन्न रहने लगेगा। और जहां मन प्रसन्न है वहां अनेकों की आशीर्वाद स्वतः हमें प्राप्त होती है। ज्ञान का आत्मसात करना है हर कर्म के आचरण के अंदर, तो जब ज्ञान को कर्म में जोड़ देते हैं वो यथार्थ कर्म योगी हो जाता है। इतनी सुंदर कर्म योग की व्याख्या, दूसरे अध्याय में कर्म योग की व्याख्या बताई, आत्मा के सातों गुण स्वधर्म को शामिल करना हर कर्म में। और तीसरे अध्याय में कहा जो ज्ञान की बातें हम सुनते उस ज्ञान को आचरण के अंदर कर्म में शामिल करो तो यथार्थ कर्म योगी बन जाएगा। अब चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग बताते हैं। आत्मा परमात्मा तथा इन दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान का कार्य है शुद्ध करना। ऐसा दिव्य ज्ञान कर्म योग का फल है। जैसे जैसे कर्म योगी बनते जाते तो दिव्य ज्ञान और भी हमारे बुद्धि की पराकाष्ठा बढ़ती है और बुद्धि की पराकाष्ठा बढ़ने से परिपक्वता अंदर आती है और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती। तो ऐसा दिव्य ज्ञान कर्म योग का फल है। इस अध्याय में परमात्मा गीता के प्राचीन इतिहास, इस भौतिक जगत में बारंबार अपने अवतरण की महत्ता तथा सतगुरु के पास जाने की आवश्यकता का उपदेश देते हैं। प्रथम श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक सगुण भगवान का प्रभाव और कर्म योग का विषय। ज्ञान सूर्य इस अविनाशी योग को कल्प के आरंभ में विवश मनुष्य आत्माओं को कहता है। 19वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उसकी महिमा बताई है। 24वें श्लोक से लेकर 32वें श्लोक तक फल सहित भिन्न भिन्न यज्ञों का कथन किया गया है और 33वें श्लोक से लेकर 42वें श्लोक तक ज्ञान की महत्ता बताई है। ज्ञान का महत्व जीवन में क्यों है, आध्यात्मिक ज्ञान क्यों जीवन में चाहिए, उसका महत्व बताया है। अब अर्जुन का यहाँ सबसे पहला सवाल है जो हमारे मन में भी उत्पन्न हो सकता है, और वो सवाल क्या है कि अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, आपने ये ज्ञान सबसे पहले किसको दिया था? तो भगवान कहते हैं इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में मैंने सूर्य से कहा। सूर्य से मनु को यही गीता ज्ञान प्राप्त हुआ, मनु ने अपनी स्मृति में संजोया और मनुष्य इक्ष्वाकु को मिला जिसे राज ऋषियों ने जाना, किंतु इस महत्वपूर्ण काल में वह ज्ञान लुप्त हो गया। भगवान कहते हैं इस अविनाशी योग को, योग अविनाशी है, इस अविनाशी योग को सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया। सूर्य से मनु चंद्रमा को मिला, चंद्रमा से इक्ष्वाकु को मिला जिसे राज ऋषियों ने जाना और फिर लुप्त हो गया। अब सोचने की बात यह है कि यह ज्ञान योग की आवश्यकता मनुष्य को है या सूर्य चंद्र उनको है, किसको जरूरत है, किसको जरूरत है? वास्तव में क्या हुआ है कि गीता का इंटरप्रिटेशन जितनी बार हुआ, आज से 5000 साल पहले लिखी गई, और इसीलिए 5000 साल पहले जब ये लिखी गई तो कितनी बार इंटरप्रिटेशन हुआ होगा। अब सोचने की बात है कि वो बचपन में खेल कराते हैं कि सारे बच्चों को टीचर बाहर ले जाती है, क्लास के बच्चों को, और गोलाकार में खड़ा करती है और एक बच्चे को बुलाकर उसके कान में कहानी कहती है, जो उस बच्चे को जाकर दूसरे के कान में सुनाना होता है, दूसरा तीसरे के कान में सुनाता है, तीसरा चौथे के कान में सुनाता है। जब 50वें बच्चे तक वो कहानी आती है तो वही रहेगी या बदली हो जाएगी? हम सभी अनुभवी हैं, हर एक ने ये बचपन में खेल खेला होगा कि वो पूरी कहानी बदल जाती है। आज से 5000 साल पहले भगवान ने महर्षि वेदव्यास को ज्ञान दिया जिसको गणेश जी ने लिखा, उसके बाद कितने लोगों ने इंटरप्रिटेशन किया, आज 5000 साल के बाद वही होगी गीता या उसमें भी काफी कुछ बदल गया होगा? क्या कहेंगे, आपका विवेक क्या कहता है? काफी कुछ बदल गया है, कुछ शब्द लुप्त हो गए। इसीलिए वास्तव में सूर्य को कहने की जरूरत नहीं है। भगवान सूर्य को क्यों कहेगा? जो ज्ञान की आवश्यकता मनुष्य को है वो सूर्य को क्यों कहेगा? सूर्य से मनु चंद्रमा को क्यों कहेगा? मनुष्य को जरूरत है। वास्तव में शब्द जो लुप्त हुए हैं कि कल्प के आरंभ में स्वयं प्रकाशित आत्मा जो सूर्यवंशी थी, सूर्य को कहा नहीं, सूर्यवंशी आत्माओं को कहा। तो ये ज्ञान भगवान ने सूर्यवंशी आत्माओं को कहा, सतयुग की जो सूर्यवंशी आत्माएं थी उनको कहा, जिससे फिर मनु अर्थात चंद्रवंशी आत्माओं को आत्माओं ने जाना। तो सूर्यवंशियों ने चंद्रवंशियों तक वो ज्ञान को प्रवाहित किया, फिर धीरे धीरे इक्ष्वाकु को मिला, यानी द्वापर युगी आत्माओं तक भी आया। परंतु जैसे जैसे कलयुग आया, जहां मनुष्य आत्मा विवशवान हो गए अर्थात संस्कार रहित, विवशवान माना संस्कृत का ये शब्द है, संस्कार रहित हो जाते हैं कलयुग के अंदर, उस अवस्था में रिद्धि सिद्धियों का संचार होता है। आज हर एक कलयुग में इंस्टेंट फल चाहता है, इंस्टेंट फल चाहता है ना, मेहनत करना नहीं चाहता, पुरुषार्थ करना नहीं चाहता, इंस्टेंट। और इसीलिए लोग रिद्धि सिद्धियों को, मैली विद्याओं का आचरण करते हैं, उसको अपनाते हैं कि भाई मेहनत नहीं करना, भाई किसको पैसा दे दिया, कुछ विद्या कर दो, रिद्धि सिद्धि या तांत्रिक विद्या कर लो और बस हमें तो फल चाहिए। तो रिद्धि सिद्धि का संचार होता है जिसके प्रभाव के कारण ये ज्ञान लुप्त हो जाता है। और अब यही वह पुरातन योग, आज मैंने तुझको फिर से कहा, जिससे सर्व को प्राप्त होगा। भगवान ने अर्जुन को कहा, यानी हम सब अर्जुन को कहा, जिससे अनेकों को प्राप्त होगा। तो देखो कैसे शब्द लुप्त हुए, सूर्य नहीं, सूर्यवंशियों को कहा, सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने जाना, चंद्रवंशियों से द्वापर युग तक भी ये ज्ञान आया। लेकिन जैसे जैसे कलयुग आया, रिद्धि सिद्धि का संचार हुआ, तो धीरे धीरे ये ज्ञान लुप्त हो गया। राज ऋषियों ने जाना द्वापर युग तक, और फिर ये लुप्त हो गया, जो फिर से भगवान आज अर्जुन को कहता है। कितनी सुंदर बात कही, ये ज्ञान लुप्त भारत के अंदर किस तरह से हुआ। हम सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत के अंदर एजुकेशन सिस्टम नहीं थी, गुरुकुल आश्रम चलते थे, और उस गुरुकुल आश्रम के अंदर क्या सिखाया जाता था, उस गुरुकुल आश्रम के अंदर हमारे शास्त्र सिखाए जाते थे बच्चों को, और उस शास्त्र के अंदर जो साइंस है वो सिखाया जाता था, उस शास्त्र के अंदर जो व्यवहारिकता है वो सिखाई जाती थी। इसलिए लोगों के अंदर संस्कार, और वो हमारे जड़ों के साथ जुड़े रहते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो कहा जाता है, मैकलिन जब आया भारत के अंदर 1500वीं सदी में, सारा भारत भ्रमण किया उसने, और भारत भ्रमण करने के बाद उसने लंदन की रानी को पत्र लिखा, जो पत्र इंटरनेट पर आपको मिल सकता है, और उस पत्र में लिखा कि मैंने सारा भारत भ्रमण किया लेकिन इस देश पर राज्य करना नामुमकिन है। कहा क्यों? क्योंकि इस देश के अंदर मुझे एक भी भिखारी नहीं मिला और एक भी चोर नहीं मिला। लोग घरों का दरवाजा खुला रख के सोते हैं, एक भी चोर नहीं है और एक भी भिखारी नहीं है। ये देश की संस्कृति इतनी ऊंची है कि इनको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। ये हमारी संस्कृति थी। आप सोचो, जिस देश में, जिस धरनी पर एक भी चोर ना हो, एक भी भिखारी ना हो, तो वो संस्कृति की जो रिचनेस है, जो समृद्धि है, वो कितनी ऊंची होगी। तो रानी ने पूछा इसका कारण, इसका रहस्य, तो कहा इनके शास्त्र, इनके शास्त्र। ये लोगों को शास्त्र इतने सिखाए जाते हैं कि वो चीज उनके नस नस में जैसे खून बन करके घूमती है। उनके गुरुकुल के अंदर उनको ये शास्त्र पढ़ाए जाते हैं, और वो शास्त्र का प्रैक्टिकल स्वरूप उनके जीवन में आता है। इसीलिए इनके संस्कार इतने अच्छे, माना कलयुग तक भी, आज से 500 साल पहले तक भी इतने अच्छे संस्कार ये भूमि के रत्नों के थे। तब रानी ने कहा इनके गुरुकुल बंद करवाओ और एजुकेशन सिस्टम शुरू करो। और तब पहली पहली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की ब्रांच कलकत्ता में खोली गई। कलकत्ता राजधानी थी उस समय। तो कहा एजुकेशन सिस्टम शुरू करो। और जब उसको शुरू किया और उनको कहो कि शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं मिलने वाला है, दुनिया का ज्ञान पढ़ो और डिग्री लो, सभ्य बनो, ये उनको सिखाओ उस एजुकेशन में। इसीलिए वो एजुकेशन सिस्टम शुरू हुई और जैसे ही लोगों को कहा कि आपके शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं मिलना है, दुनिया में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप लोगों के अंदर सभ्यता नहीं आएगी, आप अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में भेजो, वहां उनके अंदर सभ्यता आएगी जो दुनिया के अंदर खड़े रह सकेंगे, डिग्रियां प्राप्त होगी और वो डिग्रियों से वो बहुत आगे बढ़ेंगे। लोग उनकी बातों में आ गए, लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल में भेजना चालू किया, गुरुकुल में कोई जाता ही नहीं था, धीरे धीरे गुरुकुल बंद होने लगे और इस तरह से एजुकेशन सिस्टम शुरू हुई। लोगों को यह कहा गया कि आपके शास्त्र अगर आपको पढ़ना है, हम उसको लंदन ले जाते हैं और उसको प्रिंट करके आपको देंगे, आप अपने घर में रखो, पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, बाकी स्कूल तो भेजना ही चाहिए। और इस तरह से वो हमारे ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थे लंदन लेके गए छापने के लिए, वहां के प्रिंटिंग प्रेस में छापने के लिए, और उस समय ताकि हमारे शास्त्र पुनः हमें एकता के सूत्र में न बांधे, इसीलिए वेदों के श्लोक कुछ गीता में डाल दिए, गीता के श्लोक उठाकर उपनिषदों में डाल, मना सब इधर उधर कर दिए। इसीलिए कहा जाता है कि पहले जो ओरिजिनल गीता सुनाई थी भगवान ने अर्जुन को, बहुत छोटी थी। महाभारत के अंदर, महाभारत की रचना जब हुई थी महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा, सिर्फ 8000 श्लोक, महाभारत और गीता मिलकर के सिर्फ 8000 श्लोक थे। उसके बाद उनके चार शिष्य को दिया और कहा आप इसका अध्ययन करो और देखो इसमें क्या एडिशन कर सकते। हर एक ने 5000 एडिशन किया और वो महाभारत 40000 श्लोकों का बना। और उसके बाद लंदन जाकर के आने के बाद वो महाभारत आज 1,00,000 श्लोक है। 8000 का 1,00,000 श्लोक कितना एडिशन हुआ? ओरिजिनल श्लोक कौन से है वो तो किसी को मालूम ही नहीं, इतना उसमें एडिशन होते गया। सोचने की बात, कहां 8000 श्लोक की रचना की थी उस पूरा महाभारत की, जिसमें गीता भी समावेश थी, और आज वही महाभारत का 1,00,000 श्लोक है, तो कितना एडिशन हुआ। और इसलिए जब लंदन लेके गए, यहां के श्लोक यहां, यहां के श्लोक यहां, यहां के श्लोक यहां, ताकि मनुष्य जब पढ़े, आज गीता पढ़ेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए कई लोग कहते हैं हमने कई बार गीता पढ़ी लेकिन समझ में नहीं आता है, और यंग जनरेशन को इसीलिए वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, जब समझ में ही नहीं आता है तो पढ़ करके फायदा क्या। जो कई संस्कृत यूनिवर्सिटी के अंदर उसको पढ़ाया जाता है, इसीलिए आप गीता में आत्मा की बात अगर करेंगे तो वो कहेगा वेदों में ऐसा लिखा है, उपनिषदों में ये लिखा, सारी बातों को मिक्स करके सुनाना शुरू करेंगे, तो ओरिजिनल आत्मा की वास्तविकता का ज्ञान क्या है समझ में ही नहीं आता है। इस तरह से हमारे शास्त्र नष्ट हुए और आज इसीलिए व्यक्ति पढ़ता है उसको कुछ समझ में नहीं आता है। नहीं तो आप सोचो कि इसी भूमि में जब नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटियां थी, जब भारत ने विश्व को जीरो दिया था कैलकुलेट करने के लिए, आर्यभट्ट जैसे लोग थे उसी शास्त्र के हिसाब से उन्होंने साइंस डेवलप किया, मेडिकल साइंस डेवलप किया, हर प्रकार की शुरुआत यहां से हुई थी। उसी शास्त्र को पढ़ करके इतना साइंस उसमें समाया हुआ है, कोई बीमार नहीं पड़ता था, सदा स्वस्थ रहने लगते थे हरेक, ऐसी ये शास्त्र से उन्होंने चीजों को निकाला था। लेकिन जब ये सारे शास्त्र इधर उधर श्लोक कर दिए और उसके बाद छाप करके ला करके दिए, लो रखो गीता को, रखो अपने बच्चों को पढ़ाओ घर में। अब जब समझ में ही नहीं आता है तो क्या पढ़ाएंगे, मनुष्य खुद समझे तभी तो अपने बच्चों को समझाएगा, जब खुद ही नहीं समझता है तो बच्चों को क्या समझाएगा। और इसीलिए उन जड़ों से हमें काटा गया, जब जड़ों से हम अलग हो गए तो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, आज दुनिया में क्या हो गया, हमारा अस्तित्व रहा, हमारा अस्तित्व ही नहीं रहा। आज हर बच्चा अंग्रेज बन गया, इसलिए अंग्रेज जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा था ये बात कि हम तो जा रहे हैं लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम के द्वारा हर घर में अंग्रेज ही पैदा होंगे, अंग्रेजी खाना, अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी चलना, अंग्रेजी पीना। अंग्रेज पैदा नहीं हुए तो कौन पैदा हुआ है यहां, यही तो पैदा हुए। और इसीलिए हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी जड़ें समाप्त हो गई बहुत दूर दूर तक। इसीलिए कोई बेज नहीं है आज भारतवासियों का, जो अस्तित्व होना चाहिए वो अस्तित्व नहीं रहा, क्योंकि हमारी जड़ों से ही हमें काट दिया गया है। और पुनः उस जड़ों से जुड़ने का हमें कोई तरीका मालूम नहीं है। इसीलिए आज दुनिया के अंदर धर्म के नाम पर झगड़े, मेरा धर्म तेरा धर्म, मेरा धर्म तेरा धर्म, ये धर्म के नाम पर झगड़े शुरू कर दिए। ये हमारी संस्कृति नहीं है, धर्म के नाम पर झगड़ा करना ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति बहुत ऊंची है लेकिन आज उस संस्कृति से बहुत दूर चले गए। और इसीलिए जब भारत में हर घर के अंदर जब अंग्रेजी पैदा हो रहे हैं, वही राज कर रहे हैं, अभी तक भी अंग्रेज ही राज कर रहे हैं हमारे ऊपर। वो भले चले गए हो लेकिन घर घर में जो पैदा हुए वो अंग्रेज ही आज राज घर घर में कर रहे हैं। आज माँ बाप के नाक में दम लाने वाले वही अंग्रेज बच्चे हैं, जिसको पैदा किए अंग्रेज बच्चे ही हैं। इसलिए कहा कि भगवान ने जो कहा था, कितनी ऊंची बातें कही थी लेकिन आज लुप्त हो गई और रिद्धि सिद्धि में चले गए। तब अर्जुन का दूसरा सवाल भगवान से है और भगवान से पूछते हैं, पहला सवाल तो कि ये ज्ञान आपने सबसे पहले किसको दिया, इसको समझने के बाद दूसरा प्रश्न है क्या ये उत्तम रहस्यपूर्ण योग का वर्णन करने हेतु आप सबकी तरह पैदा होते हैं, आप सबकी तरह पैदा होते हैं। तो भगवान कहते हैं नहीं, स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है। मैं अपने स्वरूप को रचता हूं, तुम सब शरीरों को प्राप्त होते हैं, मेरा अपना शरीर कोई नहीं है। इसलिए कहा स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है, मेरा जन्म इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि मैं अजन्मा अव्यक्त हूं, शाश्वत हूं, मैं विनाश रहित पुनर्जन्म रहित प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूं। मेरे स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता है, यानी मैं किसी माता के गर्भ से पैदा नहीं होता हूं, तो मेरा स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता है। योग साधना द्वारा अपनी त्रिगुणामय प्रकृति को स्ववश करके मैं प्रकट होता हूं। स्पष्ट कर दिया अपनी उत्पत्ति का रहस्य, भगवान ने यहां स्पष्ट कर दिया। मैं अजन्मा, अव्यक्त, पुनर्जन्म रहित, विनाश रहित। और दूसरे अध्याय में क्या कहा, हे अर्जुन, तेरे भी बहुत जन्म है, मेरे भी बहुत जन्म है, ये राजा लोगों के भी बहुत जन्म है, क्योंकि वहां से कृष्ण बोल रहा था। लेकिन यहां जब कहा मैं अजन्मा हूं, तो ये स्पष्ट करता है ये श्री कृष्ण के महावाक्य नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण के माध्यम से बोलने वाली शक्ति कोई और है, और श्री कृष्ण भी साधारण नर स्वरूप में जब है तभी ये महावाक्य भगवान उच्चारण करते, मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म इन आंखों से नहीं देख सकते। श्री कृष्ण का तो जन्म देखा और माता के गर्भ से उसका जन्म हुआ, अनेक पुनर्जन्म हुए, तो ये महावाक्य किसके हैं? वो परम शक्ति परमात्मा कौन है जिसने ये कहा? तो जिसकी पूजा भारत के अंदर अव्यक्त स्वरूप, जिसको कोई साकार व्यक्त स्वरूप नहीं है, वो एक ही है, और वो है ज्योतिर्लिंगम। भारतवासियों ने जिसकी पूजा ज्योतिर्लिंगम के रूप में की, महादेव की के रूप में की, और जिसको नाम दिया सदाशिव, यानी जो सदा कल्याण करने वाले हैं। इसीलिए शिव के मंदिर जब बनते हैं, महादेव जी के जब मंदिर बनते हैं, तो शिवलिंग को कभी द्वार से नहीं लाते हैं। कहां से लाते हैं? उसका गुंबज नहीं लगाया जाता, ऊपर से शिवलिंग को उतारा जाता है। बाकी सभी देवी देवताओं की मूर्ति को द्वार से लाएंगे, लेकिन एक शिवलिंग को ऊपर से उतारा जाता है। और जब ऊपर से उतारा जाता है और उसके बाद वो गुंबज लगाते हैं, और कहीं कहीं वो गुंबज लगता नहीं है, तो फिर खुला छोड़ देते हैं और वहां पर शिव को नाम दे देते हैं तड़केश्वर, तड़के में रहने वाला ईश्वर, तड़का ही खाता है वो, है ना, तड़केश्वर नाम दे देते हैं, क्योंकि वो गुंबज लगता नहीं है। उसके बाद जितनी बार भी लगाने का प्रयत्न करो टूट जाता है, जितनी बार भी लगाने का प्रयत्न करो टूट जाता है, तो फिर कह देते तड़केश्वर है, है ना। भावार्थ कि एक ज्योतिर्लिंगम परमात्मा का भक्ति मार्ग में भी इतना सुंदर यादगार है, लेकिन हमने कभी समझा ही नहीं कि शिवलिंग को ऊपर से क्यों उतारा जाता है। क्योंकि परमात्मा एक ही है जो अवतरित होता है, वो किसी मां के गर्भ से संसार में नहीं आता है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। और इसीलिए हर गांव में शिव का लिंग अवश्य मिलेगा, महादेव जी का मंदिर जरूर मिलेगा, बाकी कोई देवी देवताओं का मूर्ति हो या न हो, लेकिन महादेव जी का मंदिर गांव गांव में मिलेगा। भारत में कोई गांव भी ऐसा नहीं है जहां महादेव जी का मंदिर न हो। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चारों दिशा में आप देख लो। जिसको कहा देवों का भी देव महादेव, सभी देवताओं ने भी जिसकी पूजा की, रामेश्वरम में श्री राम ने जिसकी पूजा की, गोपेश्वरम में श्री कृष्ण ने जिन गोपों के साथ मिलकर के उसकी पूजा की, जिन देवियों को कहा गया शिव शक्तियां, शिव की उत्पन्न की हुई शक्तियां हैं, तो जो देवों का भी देव, देवियों का भी देव, वही तो महादेव है। लेकिन यहां भारतवासी एक गलती जरूर कर देते हैं, जो शिव और शंकर को मिला देते हैं, शिव शंकर भोलेनाथ कह देते हैं। अरे जहां दोनों का नाम अलग है, शिव और शंकर, जहां दोनों का स्वरूप अलग है, एक है निराकार ज्योतिर्लिंगम, एक है आकारी देव पुरुष, जहां दोनों का कर्तव्य अलग है। एक है भोलेनाथ कल्याण करने वाले, एक है विनाशकारी। तो नाम अलग, स्वरूप अलग, कर्तव्य अलग, फिर एक कैसे हो सकते हैं? सोचने की बात है। शिव शंकर को हमेशा ध्यान मुद्रा में दिखाया, किसका ध्यान करते हैं? कैलाश पर्वत पर जाकर उन्होंने भी शिव का ध्यान किया। शिव माना सबसे बड़े से बड़ा शिवलिंग कैलाश पर्वत है, जहां बैठ करके उन्होंने भी शिव का ध्यान किया। क्यों? इतनी एकाग्रता के साथ वो शक्ति को हासिल किया जो आंख खोलते महाविनाश कर सके। ये तो हुई भारत वालों की बात। भारत से बाहर चले इस्लाम धर्म में, जहां मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन मक्का में जाते हैं तो वहां काबा का पवित्र पत्थर है। और इस काबा के पवित्र पत्थर के पीछे भी कहानी है। और कहानी ये है कि पहले मक्का के अंदर 360 देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी, जिसको वो अल्लाह मानते थे, अपने इष्ट मानते थे। परंतु मोहम्मद पैगंबर साहब जब आए तब उन्होंने कहा अल्लाह एक है। काफी लड़ाई झगड़ा हुआ, उनको मदीना भेज दिया, वहां जाके ये प्रचार करो, यहां नहीं, यहां तो हमारे ये 360 देवी देवता यही हमारे इष्ट रहेंगे। मदीना में जाकर के प्रचार किया, धीरे धीरे लोग उस विचारधारा से जुड़ते गए। जब काफी मात्रा में लोग इकट्ठे हो गए तो पुनः मक्का आए। काफी लड़ाई झगड़ा मतभेद हुआ, अल्लाह एक है। लेकिन तब कहा जाते एक आकाशवाणी हुई कि आप लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे इसी स्वरूप में याद करो। और वो पवित्र पत्थर ऊपर से गिरा, जिसकी स्थापना स्वयं मोहम्मद पैगंबर साहब ने मक्का के अंदर किया। और तब से लेकर के ये मान्यता हुई कि जीवन में एक बार ये पवित्र पत्थर का दर्शन अवश्य करना चाहिए, नहीं तो जीवन सफल नहीं हुआ। और इसीलिए हर साल उनकी हज यात्राएं निकलती है। हर साल हज यात्रा में भी हर कोई नहीं जा सकते, हज में जाने के नियम बहुत कड़े हैं। लेकिन जो हज में जाते हैं वहां जाकर क्या करते हैं? अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, शैतान को पत्थर मारते हैं, ये पवित्र पत्थर को चूमते हैं और अंत में अपनी बंदगी में यही कहते हैं कि हे परवरदिगार, नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो। तब उनका हज कबूल होता है। नूर माना, वो कहते हैं अल्लाह नूर है, नूर माना तेज प्रकाश। हिंदुओं ने कहा ज्योतिर्लिंगम, ज्योति माना तेज प्रकाश। बात एक ही है या अलग है? एक ही है या अलग है? एक ही तो है। जिसको हमने ज्योतिर्लिंगम कह के पूजा, उन्होंने नूर कह करके उसको चुमा, बात तो एक ही है। दोनों जगह लिंग का स्वरूप रखा हुआ है यादगार के रूप में, इसीलिए भारतवासी उनको कहते हैं मक्केश्वर, मुसलमानों का ईश्वर या मक्का का ईश्वर। और आगे जाए क्रिश्चियन धर्म में तो वहां पर कहा जाता कि मोसेस जब माउंटेन पर गए, जहां उन्हें 10 कमांडमेंट्स मिले, उस वक्त उन्हें अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ, जिसको देखकर मोसेस ने कहा यहोवा, यानी द सुप्रीम लाइट। जीसस ने कभी भी अपने आप को गॉड नहीं कहा, उसने हमेशा यही कहा गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। और इसीलिए जब उसको क्रॉस पर चढ़ाया, उस वक्त भी अपनी अंतिम प्रार्थना में उसने भगवान से यही कहा कि हे प्रभु, आप इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि उन्हें पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं। आज भी अगर वेटिकन चले जाओ, जो क्रिश्चियनों का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है, जहां पोप की गद्दी है, उस वेटिकन के अंदर आपको किसी व्यक्ति की प्रतिमा नहीं मिलेगी, लेकिन अखंड ज्योति स्वरूप निराकार लाइट का ही सिंबल मिलेगा, जिसको क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा, बात एक ही है या अलग है? क्या कहेंगे? एक ही तो है। गुरु नानक देव ने तो बड़े स्पष्ट शब्द में उसकी महिमा गाई, एक ओमकार सतनाम कर्ता पुरुष अकाल मूरत निर्वैर निर्भय अजोनी, बहुत सुंदर तरीके से सारी महिमा गाई। और इसीलिए दिखाते हैं कि उन्होंने भी कहा एक नूर, एक नूर है परमात्मा। कौन? तो कहा एक नूर, एक ओमकार एक नूर, और उसी का ही 550वां प्रकाश पर्व अभी पंजाब में मनाया जा रहा है कि गुरु नानक देव ने आकर के उस प्रकाश का परिचय दिया एक नूर के रूप में। और गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की महिमा गाई। और आगे जाएं जैन धर्म में 24 तीर्थंकर दिखाते हैं, और ये 24 के 24 तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन है? तो कहा सिद्ध शिलापति का ध्यान करते हैं। आज भी दिवाली के दिन जब महावीर स्वामी का निर्वाण दिन मनाया जाता है, उस वक्त जैनी लोग अपनी प्रार्थना में भगवान से यही कहते हैं कि आपने जो शिव धाम को प्राप्त किया वो गति हमें भी प्राप्त हो। ये शिव धाम कौन सा है? और उस गति को प्राप्त करने के लिए तीन बातें बताते हैं, ज्ञान दर्शन चरित्र। ज्ञान के दिव्य चक्षु खुलने चाहिए, दर्शन शास्त्र में जो बातें बताई गई है वो आचरण में लाने की जरूरत है, और चरित्र श्रेष्ठ होना चाहिए। ये तीन बातें बताते हैं। और आगे जाए महात्मा बुद्ध ने कभी भी मूर्ति पूजा की ओर प्रेरित नहीं किया, लेकिन आज भी जापान चले जाओ तो जापान के अंदर 3 फुट की ऊंचाई पर 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता है जिसको कहते चिंकुन सिकी। चिंकुन सिकी का मतलब है जो शांति का दाता है, जिसका ध्यान करने से हमें शांति प्राप्त होती है। और आगे जाए पारसी धर्म में अखंड ज्योति स्वरूप कहा जाता है। पारसी लोग जब ईरान से भारत आए थे तो जलती हुई ज्योत को लेकर के आए थे, और आज भी उनके मंदिर को कहा ही जाता है द फायर टेम्पल, जहां अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है। तो सर्व धर्म मान्य वो एक ही स्वरूप है जिसको सभी ने, देवों ने भी जिसकी पूजा की, देवी देवताओं ने भी, तो हर एक धर्म में उसी की यादगार मिलेगी, चाहे उसको ज्योति कहा, नूर कहा, प्रकाश कहा, लाइट कहा, अखंड ज्योति कहा, निराकार कहा, सिद्ध शिलापति का, चिंकुन सिकी कहा, जो भी नाम कहे, किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा, मालिक कहा। साईं बाबा ने क्या कहा? सबका मालिक एक। साईं बाबा ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, लेकिन हम सभी रास्ता भटक गए हैं, और हम सभी उन्होंने रास्ता बताने के बाद भी उस रास्ते पर चलने का प्रयास तक नहीं किया, और उन्हीं को भगवान मान करके पूजने लगे। और आज तो मनुष्य भगवान बन बैठा, और जब ऐसे समय आ जाता है तो इसी को तो धर्म ग्लानी कहा जाता है। जब सभी धर्मों ने एक ही बात सिखाई, एक ही के तरफ इशारा किया, तो हम रास्ता क्यों भटक रहे हैं? हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? क्यों लड़ाई करें? इसीलिए कहा सबसे प्राचीन भारत ही सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि था, और आने वाले समय में विश्व गुरु भी वही बनेगा, क्योंकि वही सभी धर्मों को एक कर सकता है। ये ताकत सिर्फ भारत के अंदर है और किसी में नहीं। भारत इसीलिए कहा गया, भारत, भा माना आभा, भा का मतलब ये आभा, जिस रत्ती की, जिस मिट्टी की आभा ऐसी है जो एक कर सके, जिनके संस्कार इतने ऊंचे हैं, जिनकी संस्कृति इतनी ऊंची है, हमें पुनः आध्यात्मिकता के माध्यम से उस संस्कृति के साथ जुड़ना होगा, एक होना होगा, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। लड़ते रहेंगे तो कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता है, क्योंकि हमारी संस्कृति कभी लड़ाई नहीं सिखाती है, हमारी संस्कृति एकता सिखाती है, ये हमारी संस्कृति है। इसीलिए अपनी जड़ों के साथ पुनः जुड़ करके आध्यात्मिकता के माध्यम से अपनी जड़ों को पुनः इतनी मजबूत करें, तब इस भारत को विश्व गुरु बनने में देर नहीं लगेगी। तब कहा कि अर्जुन ने जो सवाल भगवान से पूछा, क्या यह उत्तम रहस्यपूर्ण योग का वर्णन करने हेतु आप सबकी तरह पैदा होते हैं? तब भगवान कहते, नहीं, स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है। मेरा जन्म इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि मैं अजन्मा, अव्यक्त, शाश्वत हूँ। मैं विनाश रहित, पुनर्जन्म रहित, प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। मेरे स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं हो सकता है। योग साधना के द्वारा अपनी त्रिगुणामय प्रकृति, सत्विक राजसिक तामसिक, ये त्रिगुणामय प्रकृति को स्ववश करके मैं प्रकट होता हूँ। फिर अर्जुन का दूसरा प्रश्न, आप किस परिस्थिति में और कब प्रकट होते हैं? तब भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य। भावार्थ, यहां अर्जुन को हे भारत कहकर के संबोधित किया है कि हे भारत, जब जब, जब जब परम धर्म, भारत का धर्म परम धर्म था, हिंदू कोई धर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने चुकादा दे दिया कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन शैली है। हमारा ओरिजिनल धर्म कौन सा? सनातन धर्म। ये हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ परम धर्म वो है सनातन धर्म। लेकिन सनातन धर्म के अंदर जो सत्यता थी, वो सत्यता लुप्त होने कारण हमने हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू कह दिया अपने आप को, बाकी हिंदू कोई धर्म नहीं है। जैसे अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन, अमेरिकन कोई धर्म नहीं है। जापान में रहने वाला जापानी, जापानी कोई धर्म नहीं है। ऐसे हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू, हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक जीवन शैली है। ये सुप्रीम कोर्ट का अभी फाइनल डिसीजन आ गया कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदुओं का धर्म सनातन धर्म है, जो परम धर्म, जो सत्यता का धर्म है। और वो सत्यता का धर्म में से सत्यता अगर लुप्त हो जाए तो उसकी वैल्यू कितनी कम हो जाएगी। इसीलिए आज हिंदू आपस में भी लड़ रहे हैं, दूसरे भी लड़ा रहे हैं हमें, हम पपेट्स हो गए हैं। लेकिन पुनः उस सनातन परम धर्म के साथ, उस संस्कृति के साथ, उस जड़ों के साथ हमें जुड़ना होगा, तब कोई हमें लड़ा नहीं सकता है, और तब विश्व गुरु के रूप में उभरेंगे। तब भगवान अर्जुन को कहते, हे भारत, जब जब परम धर्म और परमात्मा के प्रति हृदय ग्लानी से भर जाता है, जब अधर्म की वृद्धि हो जाती है, तब तब मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ और मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। यहाँ अवतरण से अभिप्राय पुनर्जन्म लेना नहीं है, अपितु पुनः अपने स्वरूप को प्रकट करना है। बहुत सुंदर बात भगवान यहाँ कहते हैं। और आगे इस अध्याय के अंदर, चौथे अध्याय में, जो और रहस्य की बातें, ज्ञान की महत्ता की बातें बताई है, उसको आगे कल देखेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए हम सभी बैठते हैं, परमात्मा में अपने ध्यान को एकाग्र करते हैं। अभी इतना पता चला कि परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, जो सर्वधर्म मान्य है, तो उस दिव्य स्वरूप में अपने ध्यान को एकाग्र करना सहज हो जाता है। आज तक हमारी शिकायत रही ध्यान नहीं लग पाए, क्योंकि पता ही नहीं किस में लगाना है। जब पता ही नहीं तो कहां लगाएंगे। इसीलिए अब थोड़ी देर के लिए हम सभी बैठेंगे और अपने ध्यान को उस दिव्य स्वरूप में एकाग्र करेंगे और उस परमात्मा की सर्वशक्तियों की ऊर्जा को अपने अंदर आने दें, आत्मा को भरपूर करें उस ऊर्जा से। तो चलिए स्वस्थ होकर के बैठेंगे, पीठ सीधी हो और अपने मन और बुद्धि को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं। आत्म स्वरूप में स्थित करते हैं। अंतर चक्षु से स्वयं को देखें, भ्रुकुटी के मध्य में एक चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में, म्यूजिक आत्मभाव में स्वयं को स्थित करें, अंतर चक्षु से भ्रुकुटी के मध्य में स्वयं को देखें, ज्योति पुंज के रूप में मैं आत्मा अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति पुंज हूं। प्रकाश पुंज हूं। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध और पवित्र स्वरूप चारों ओर प्रकाश का दिव्य प्रभा मंडल है। ये मेरा असली स्वरूप है। मैं आत्मा अपने सतोगुण स्वरूप में स्थित हूं। मेरा स्वधर्म शांति है। मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। शांति मेरी वास्तविकता है। अब धीरे धीरे अपने मन को ले चलते हैं ईश्वर के सानिध्य में। चारों जैसे मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूं, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप है। जो अजन्मा है, अव्यक्त है, पुनर्जन्म रहित है, विनाश रहित है, जो अधर्म के समय पर इस संसार में अवतरित होते हैं, जो सदा कल्याण करने वाले भोलेनाथ है, मेरे पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान परमात्मा से सर्वशक्तियों की किरणें मैं स्वयं में समाती जा रही हूं और सशक्त हो रही हूं। परमात्मा शक्ति की ऊर्जा से अपने जीवन रूपी यज्ञ का शुद्धिकरण करती हूं और यथार्थ कर्म योगी जीवन परमात्म ज्ञान से अपने कर्मों में श्रेष्ठता और कर्म की श्रेष्ठता से जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध होता जाता है, जिससे अनेकों की कृपा वृष्टि के पात्र बन जाती हो। और मन का खुराक प्रसन्नता का अनुभव करती हो। इस योग साधना से ही मन बुद्धि और इंद्रियों को संयम में ले आ सकती हूं और पाप का नाश होता है। परमात्मा की याद से मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूं, शुद्ध होती जा रही हूं। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को वापस प्रकृति के मध्य में स्थिर करती हूं। और परमात्मा शक्ति की ऊर्जा को हर कर्मेंद्रिय में प्रवाहित होने देती हूं। ओम शांति शांति।